कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परशुराम जी की कथा। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के दर्शन के लिए जा रहे हैं, पांडवों को रास्ते में सुना रहे हैं। और उधर भीष्म पितामह के पास खूब से साधु संत महापुरुष ब्राह्मण लोग आए हुए थे। उनके बीच में पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाई। वैशंपायन जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने परशुराम जी महाराज की कथा सुनी और उन्होंने कहा, महाराज परशुराम जी तो साक्षात भगवान के अवतार थे, उन्होंने क्षत्रियों के संहार की बात क्यों सोची? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए और क्षत्रियों में आए हुए दोष का निवारण करने के लिए ऐसा किया, परशुराम जी में कोई राग द्वेष नहीं था। ऐसी ऐसी बातें करने लगे। इतने में ही पितामह भीष्म के पास सब पहुंच गए। पितामह भीष्म उस समय सरसैया पर पड़े हुए थे। वहां आसपास में बैठे हुए ऋषियों मुनियों को और लोगों को पता चला कि वासुदेव कृष्ण, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीमसेन, इंद्रपुत्र अर्जुन, अश्विनी कुमार पुत्र नकुल और सहदेव के साथ पितामह भीष्म के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो वे सब अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। भगवान अपने रथ के साथ उतरे और बड़े प्रसन्न मुद्रा में पांचों पांडवों को अपने साथ लिए हुए पितामह भीष्म की ओर आगे बढ़े। युधिष्ठिर महाराज ज्यों ज्यों पितामह भीष्म के पास जाते हैं, त्यों त्यों उनका हृदय कांपने लगता है। पितामह भीष्म की सरसैया पर पड़ी हुई मुद्रा को देखकर उनके शांत हृदय के अंदर बड़ी वेदना प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण बार बार धर्मनंदन युधिष्ठिर महाराज का प्रोत्साहित करते हुए पितामह भीष्म के पास लाए। पितामह भीष्म के दर्शन करते ही पांचों पांडवों का हृदय विदीर्ण हो गया। भगवान कृष्ण किस किस को समझाए? युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी इस अवस्था को देखकर बुरी तरह से बिलख पड़े। भगवान ने सबको धैर्य दिलाया और उसके बाद भगवान ने पितामह भीष्म से कहा, किंचित् ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि यथा पुरा कच्चिन्न व्याकुलता चैव बुद्धिस्ते वदताम वर। पितामह भीष्म जी, क्या आपकी सारी इंद्रियां पहले जैसे काम कर रही हैं? क्या आपका चित्त पूर्ववत प्रसन्न है? कहीं आपके चित्त में व्याकुलता तो नहीं है? इतने इतने शरीर में आपके बाण लगे हुए हैं, क्या कहीं आपको भयंकर पीड़ा तो नहीं हो रही है? क्योंकि कभी कभी मनुष्य मन में उठने वाली पीड़ा को जो कुविचार से पैदा होती है उसको सद्विचार से मिटा सकता है, परंतु शरीर की पीड़ा को कैसे मिटाए? शारीरम बलवत्तरम, शरीर की पीड़ा बड़ी भयंकर होती है महाराज। हमें बड़ा आश्चर्य होता है पितामह, आपके पिताजी ने आपको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, आपके शरीर में तिल रखने जितनी जगह भी बाण से खाली नहीं है, और आप मृत्यु को बुला नहीं रहे हैं, इस शरीर का खूब कष्ट भोग रहे हैं, क्या कारण है? यदि आदमी के शरीर में एक सुई का भी प्रवेश हो जाए वो उसको व्यथित कर देता है, आपके तो बाणों का जाल फंसा हुआ है, और इच्छा मृत्यु होने पर भी, क्योंकि आपकी मृत्यु भाग्य के अधीन नहीं है, आपके संकल्प के अधीन है, फिर भी आप अपना शरीर नहीं छोड़ रहे हैं, यह कोई विशेष कारण होना चाहिए। मैं आपको ज्यादा क्या कह सकता हूं पितामह, आप सब जानने वाले हैं। देखो भगवान के वचन कितने मीठे हैं, कितने आदर के हैं। कामम नैतत् तवाख्येयम्, आपको मैं क्या समझाऊं? आप तो सब जानते हैं कि मनुष्य का जीना मरना प्रारब्ध के अधीन होता है। जब तक जिस समय तक प्राणी का शरीर रहना होता है उस समय तक वो रहता है, और जब उसका यहां प्रारब्ध क्षीण हो जाता है तब वो चला जाता है, चाहे वो देव शरीर भी क्यों ना हो। ये सब बातें आपके सामने कहने से क्या मतलब, क्योंकि आप तो जानते हो। देवानाम अपि भारत, देवताओं को भी आप उपदेश देने में समर्थ हो। इतना ही नहीं, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हो। लोग तो आपको अवस्था के कारण से पितामह बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ज्ञान की दृष्टि से पितामह कहता हूं। शरीर तो बहुत से लोगों का बूढ़ा हो जाता है, पर ज्ञान वृद्ध कहीं नहीं मिलते, सब हमको बालक मिलते हैं। प्राणियों का संहार कब होता है, धर्म किस प्रकार से फलवान होता है, कैसे वो उदित होता है, इस चीज को आप जानते हैं। आपने इतने बड़े हस्तिनापुर के राज्य की एक बहुत लंबी चौड़ी परंपरा देखी है। हमें बड़ा आश्चर्य है कि हजारों हजारों स्त्रियों के बीच में रहते हुए भी आपके जीवन में कोई दाग नहीं लगा। मैंने तीनों लोकों में ऐसा सत्यवादी, इतना शूरवीर, ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसा धर्मपरायण दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देखा है। सत्य में देख लो, तपस्या में देख लो, दान में देख लो, यज्ञ आदि में देख लो, धनुर्वेद में देख लो, वेदों में देख लो, वैदिक ज्ञान में, दया में, उदारता में, त्वत्सदृशम न कंचित अनुशुष्टुम है, आप जैसा मैंने आज तक सुना भी नहीं है, देखा गया सुना नहीं है। केवल आप मनुष्यों में ही नहीं, देवताओं में भी, गंधर्वों में भी, यक्ष राक्षसों में भी, और आप अपने बल पौरुष से देवताओं को भी धूल चटाने वाले हो। मैं आपको खूब अच्छी तरह से जानता हूं। हे मनुष्येंद्र, मनुष्यों में भी इतना गुणवान व्यक्ति हो सकता है ये आपने अपने जीवन से दुनिया के सामने बताया है। मैं आज आपसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा आगे करते हुए पितामह भीष्म के आंख के सामने उनको खड़ा करते हुए बताया, ये पांडुनंदन धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक कर रहे हैं, आप इनके शोक को दूर कीजिए। कुटुंबी जनों के वध से इतने संतप्त हो रहे हैं कि समझाने पर भी इनके बात समझ में नहीं आती है। युधिष्ठिर महाराज कितने विफल हो रहे हैं ये आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। आप इनको चतुर्वर्ण, चतुराश्रम, चतुर्विद्या इन सब के विषय में, चातुर्होत्र माने चार प्रकार के होता उद्गाता आदि का कर्तव्य ये सब बताइए, योग और सांख्य का सार भी बताइए। चतुर्वर्ण में जो कुछ धर्म से विपरीत बात नहीं होती है वो सब बताइए। प्रतिलोम और अनुलोम इनमें उत्पन्न होने वाले लोगों के क्या धर्म होते हैं ये बताइए। प्रतिलोम माने माता उच्च वर्ण की हो और पिता निम्न वर्ण का हो, वो होता है प्रतिलोम या विलोम। और पिता उच्च वर्ण का होता है और माता यदि निम्न वर्ण की होती है उनसे पैदा होने वाला संतान वो अनुलोम कहलाता है। इन सब को आप जानने वाले हो, इतिहास पुराण ये सब आपके सामने है। और भी कोई बात जो संशय की निवृत्ति के लिए आवश्यक हो आप महाराज युधिष्ठिर को समझाइए। पांडुनंदन धर्मराज की मनस्थिति बड़ी विचित्र चल रही है, इनके अंदर शोक का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी पैदा हो गया है, वो आपके वचनों से ही शांत होने वाला है और कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ओर ही ताकते हुए पितामह भीष्म बहुत स्नेह में डूबकर और बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथों को उठाकर, जिनके खूब बाण लगे हुए हैं, यूं हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपके दर्शन कर रहा हूं और मुझे कोई बात याद ही नहीं है, मैं तो आपके प्रेम में डूब गया हूं। इस भीष्म पर कृपा करने के लिए आप स्वयं किस प्रकार पधारे हैं, आपकी कृपा से मैं अभिभूत हो गया हूं। हे ऋषिकेश, आप इस संसार के उत्पादक हो, संसार के संचालक हो, संसार के संहारक हो, आप इस संसार में किसी के द्वारा पराजित नहीं होते हो। त्रिलोकी के अंदर आपसे बढ़कर कोई पुरुष नहीं है। हे योगेश्वर, मैं आपको जितनी बार प्रणाम करूं उतना ही मैं बहुत थोड़ा मानता हूं। जहां तक आपने मुझे कहा, जिन गुणों से मुझे बताया गया, मैं उन गुणों को सुन करके मैं आपके अंदर ही वो गुण देखता हूं। आपके सिर के ऊपर मेरी दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मलोक आपके सिर के ऊपर, ब्रह्मलोक तो आपका शिरोभाग है, आकाश आपके नाभि कमल में है और ये पृथ्वी आपके चरणों में प्रतिष्ठित है। कितना सुंदर आपका ये अतिशी के फूल के समान कोमल शरीर है, और इसके ऊपर ये पीताम्बर और उसके बाद ये आपके मणिमय आभूषण वर्षाकालीन मेघ के अंदर बिजली की सी शोभा देने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कृष्ण, जीवन के इन अंतिम क्षणों में केवल आपकी याद चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान वासुदेव ने कहा, पितामह भीष्म, आपकी मेरे अंदर कितनी भक्ति है ये मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने आपको अभी जैसा रूप दिखाया है ऐसा रूप इनमें से कोई नहीं देख रहा है। देखो, भगवान जिसको दिखाते हैं जैसा रूप, वो पास में खड़े वाले तो नहीं दिखते, उनको तो वैसे दिखते हैं, पितामह भीष्म कैसा दिख रहा है। मैंने आपको जो दिव्य दर्शन कराया है अभी, ये केवल आपके ऊपर कृपा करने के लिए, आपकी पराभक्ति मेरे में, इसलिए जो मेरा भक्त नहीं होता वो मुझे एक साधारण मनुष्य के समान समझता है। पितामह, आप तो मेरे भक्तों में भी श्रेष्ठ भक्त हो, और आर्जवम आस्थित एकदम सरल हो, दम तपस्या सत्य में रहने वाले हो। मैं आपके पास जिस काम के लिए आया था वो आपने नहीं सुना होगा। पितामह भीष्म ने कहा, आपने कुछ कहा मुझे याद ही नहीं रहा, मैं तो आपके रूप के अंदर ऐसा इंद्रियों सहित डूब गया जैसे कोई पानी में डूबता है तो ऊपर के लोग क्या बोलते हैं कुछ पता नहीं चलता। कृष्ण, मुझे क्या, आप क्या कहना चाहते हो? पितामह, अब आपके जीवन के केवल 56 दिन बाकी है, 50 षट चक्रूप प्रवीर है, 56 दिन बाकी है। छप्पन दिन के बाद न पांडवों को आप मिलेंगे और न पांडु आपका दर्शन कर पाएंगे। हे पितामह, यहां रहने वाले लोगों को पता नहीं है आकाश में देवता किस प्रकार से विमानों में बैठे हुए आपके दिव्य लोक में शुभागमन की तैयारियां कर रहे हैं। व्यावर्तमाने भगवत्युदीचिम सूर्ये दिशम काल वशात प्रपन्ने। अब सबको पता है कि आप ये शरीर क्यों धारण किए हुए हैं, केवल दक्षिणायन के समाप्ति के बाद उत्तरायण में आने तक की प्रतीक्षा हो रही है और आपका कोई जीने का कारण नहीं है। आप जैसा महापुरुष इस संसार से चला जाए और अंतिम समय में यदि धर्म की चर्चा हो जाए तो आप इस सृष्टि की शरीर त्याग के बाद भी बहुत बड़ी सेवा करोगे। लोग आपके वचनों का आदर करेंगे कि पितामह भीष्म ने मरते मरते ये बात कही है, इसलिए आपको एक बहुत सच्चा अधिकारी पुरुष मैं दे रहा हूं युधिष्ठिर। इस युधिष्ठिर को आप ऐसा धर्म पूर्वक समाधान कीजिए कि इसका शोक दूर हो जाए और ये शेष जीवन शांति के साथ व्यतीत कर सकें। पितामह भीष्म ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, सब कुछ जानने वाले हो फिर भी आप मुझसे ये क्या बात कहते हो? मैं आपके रहते हुए, आप यहां खड़े और आपके रहते हुए उपदेश देऊं? सौभाग्य तो मेरा यही है कि आप मुझे सुनाए, मैं आपके मुख से सुनता सुनता जाऊं। मेरी आयु आपने बताई दी है, आप ज्ञान दीजिए, मैं ज्ञान सुनता हुआ जाऊं। लोक में ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कर्तव्य आपकी स्मृति में न आता हो और हम जानते हो। कोई इंद्र के पास जाकर इंद्रलोक की बात कहे कि देखो तुम्हारा इंद्रलोक ऐसा है, तुम्हारा इंद्रलोक ऐसा है, इंद्र कहेगा कि भाई इस इंद्रलोक में तो मैं रहता ही हूं, तुम मुझे इंद्रलोक क्या बताओगे। ऐसे ही धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में मैं सुनाऊंगा आपको? नहीं सुना सकता। और देखो अब टलने के लिए एक बात भी बोलते हैं, एक बात क्या बोलते हैं, देखिए कृष्ण शराबी तापात व्यथितम, मेरे तो जगह जगह शरीर में बाण लगे हुए हैं, मेरा मन बड़ा व्यथित हो रहा है, गात्राणी चाव सीदंती, मेरा शरीर बहुत कष्ट को प्राप्त हो रहा है, मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती है, अब पहले जैसी मेरी सोच समझ भी नहीं रही है, दर्द के अंदर बुद्धि का विक्लव हो जाना माने काम करना बंद हो जाना ये तो स्वाभाविक बात है। हे गोविंद ऐसे जहरीले जहरीले बाण लगे हैं, इन बाणों के लगने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूं, न तो मेरे अंदर पहले जैसा बल है, न मेरे अंदर पहले जैसे प्राण की शक्ति रही है, दुर्बल हो जाने से मेरी जीभ है ये बोलते बोलते ये दुलड़ी हो जाती है, तालू के जाकर चिप जाती है। साधु में त्वम प्रसीदस्व, इसलिए आप मेरे पर कृपा करो और आप ही ज्ञान की बात कहो, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। न मुझे दिशाओं का ज्ञान, न मुझे आकाश का ज्ञान, न मुझे पृथ्वी का ज्ञान, धर्मराज के लिए तो आप ही बोलिए महाराज, धर्मराज तो आपके पास ज्यादा निकटता में बैठे हुए हैं। कथम त्वयि स्थिते कृष्णे शाश्वते लोक कर्तरी, जगत के कर्ता और सनातन पुरुष तो आप ही हो महाराज, जैसे गुरु के सामने शिष्य क्या बोल सकता है, क्या उपदेश दे सकता है, ऐसे मैं युधिष्ठिर को क्या समझा सकता हूं। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, पितामह उपपन्न मिदम वाक्यम कौरवाणाम धुरंधरे, आप कितने विनम्र हैं, कितने धैर्यवान हैं, और आप कितने आत्मश्लाघा से दूर रहने वाले हैं। आप मुझे बोलते हैं कि मेरे शरीर में बाणों से बड़ी पीड़ा हो रही है, तो ये आप मेरे को प्रसन्नता से जो ये कहते हैं कि मेरे को वरदान दीजिए, तो हम आपको वरदान देते हैं, आप धारण कीजिए। मैं बोलता हूं आप धारण करते जाओ। नते ग्लानिर नते मूर्छा न दाहो नचते रुजा प्रभविष्यन्ति गांगे क्षुत पपासे नचाप्युत, हे भीष्म आपको अब कोई ग्लानी नहीं होगी, कोई मूर्छा नहीं होगी, कोई बाणों की पीड़ा नहीं होगी, कोई शरीर में रोग नहीं होगा। हे गंगानंदन न आपको भूख लगेगी न प्यास लगेगी, जितना ज्ञान आपके अंदर है वो सारा का सारा ज्ञान आप में उद्भासित होगा और आपकी बुद्धि कहीं पर भी किसी प्रकार से आसक्त रहने वाली नहीं होगी। हे भीष्म महाराज आपका मन सदा सत्व गुण के अंदर आवृत रहेगा और आपकी वाणी के अंदर धर्म और उसका अर्थ ये दोनों प्रकट होते चले जाएंगे। हे राजश्रेष्ठ चार प्रकार के प्राणी हैं, स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज, इन सब प्राणियों को आप यूं लेटे लेटे ज्ञान शक्ति से देख पाएंगे। ज्ञान दृष्टि से आप संसार बंधन में पड़े हुए समस्त लोगों की क्या दशा है उसको वैसे ही देख लेंगे जैसे पानी के अंदर पड़ी हुई मछली पानी की गहराई तक को देख लेती है। तब व्यास जी वगैरह जितने भी ऋषि मुनि आए थे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। हे कृष्ण, आज तुमने कितना उत्तम काम किया है। पितामह भीष्म के अंदर रहने वाला ज्ञान उसको आपने जनता के हित के लिए प्रकट करने की शक्ति दी है। बहुत कृष्ण का आभार मानते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद वहां पर देवता लोग थे, अप्सराएं थी आकाश में, वे भी बड़ी आनंदित हो गईं फूलों की वर्षा की। और उन्होंने भी अपने अपने वाद्य यंत्र बजाए कि आज पितामह भीष्म को सब प्रकार से भगवान ने वरदान दे दिया। ऐसी सुखद वायु बह रही थी, उस वायु के अंदर शीतलता भी थी और मधुरता भी थी, सुगंध भी थी। सब प्रकार से जब शांत हो गए तब वहां देखा गया कि सूर्य है वो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। तब धीरे धीरे सब महर्षिगण उठ करके पितामह भीष्म को प्रणाम किए और राजा युधिष्ठिर से भी उन्होंने विदा मांगी कि अब संध्या का समय हो रहा है, हम लोग अपना संध्या का काम करेंगे। सब ने प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी पितामह भीष्म को प्रणाम किया, पांडवों ने भी किया और कृपाचार्य ने भी किया। और सब अपने अपने रथों में बैठ करके वापिस हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए। हस्तिनापुर में आते हुए महाराज युधिष्ठिर मार्ग के अंदर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का स्मरण कर करके बड़े भाव विवल हो रहे थे। उनके मन में ये बार बार विचार आ रहा था कि देखो कृष्ण भगवान की मेरे पर कितनी कृपा है, वो मेरे शोक को दूर करने के लिए पितामह भीष्म से कैसी याचना सी कर रहे हैं। ऐसी कृपा मानते मानते कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर में आ गए। कुरुक्षेत्र से रात्रि में निवास किया और प्रातःकाल हुआ। भगवान श्री कृष्ण जब रात में आधा पहर बाकी रहा तब उठ गए और उठ करके ध्यान करने लगे। ध्यान करने का सज्जनों सबसे बढ़िया समय होता है। भागवत में भी आता है, यहां भी आया है और जगह भी आया है। सुबह जल्दी उठ करके, वहां कोई बात नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, सब सोए हुए हों, बैठ करके ध्यान करना चाहिए। सेठ जी ने तो ये लिखा है कि सुबह पहले उठो तो निर्गुण निराकार का ध्यान करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो और उसमें डूब जाओ और नहा धो करके पाठ पूजा करो। तब अपने इष्ट देव का सगुण साकार रूप से यदि इष्ट मानते हो तो उनका ध्यान करो। जो राम जी को मानते हैं वो राम जी का ध्यान करें, जो कृष्ण को मानते हैं वो कृष्ण का ध्यान करें, जो शिव जी को मानते हैं वो शिव जी का ध्यान करें, जो जिनका ध्यान करें वो सगुण का ध्यान पाठ पूजा के बाद करना चाहिए, निर्गुण का ध्यान उठते ही करना चाहिए। सेठ जी से पूछा कि ऐसा क्यों, तब उन्होंने बताया कि देखो उस समय पाठ पूजा के समय तो जिन पुस्तकों को लेकर आप पाठ पूजा करते हो उसमें भगवान की महिमा बहुत होती है, तो सगुण साकार में वो ध्यान चलेगा। और उठते हैं तो उस समय अपने शरीर में भी बड़ी शांति, मन बुद्धि इंद्रियों में भी ताजगी, वहां निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। से ध्यान प्रथम आविश्य सर्वज्ञानानि माधव अवलोक्य ततः पश्चात दद्यौ ब्रह्म सनातनम्। एक ब्रह्म सनातन ब्रह्म का उन्होंने ध्यान किया, भगवान ने अपने ही स्वरूप का ध्यान किया। फिर जो है वहां राजा महाराजाओं के यहां जगाने वाले पुरुष थे, उन्होंने वाद्य यंत्र बजाए, जगे सब लोग। इधर युधिष्ठिर महाराज भी जगे, उनको भी मधुरवाणी से जगाया गया और सब एकदम तैयार होकर ब्राह्मणों को दान वगैरह देकर सब लोग जो है अब पितामह भीष्म के पास जाने की तैयारी में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहा, देखो युधिष्ठिर महाराज दूसरे महल में रहते थे, अर्जुन दूसरे महल में रहते थे, तो एक महल में नहीं, अलग अलग सबके महल। तो भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहा, सात्यकी जाओ महाराज युधिष्ठिर से कहो कि क्या पितामह भीष्म के दर्शन करने के लिए आप तैयार हो गए हैं ना। तो सात्यकी जी ने जाकर युधिष्ठिर जी से कहा, युक्तो रथ वरो राजन वासुदेवस्य धीमतः समीपम आपगेयस्य प्रयास्यति जनार्दन है। महाराज भगवान कृष्ण तो तैयार हो चुके हैं, उनका रथ तैयार है, पितामह भीष्म के पास जाने के लिए अब आपके लिए कितना विलंब हो सकता है, वो तो केवल आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, अपने अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरा रथ तैयार है ना, पर देखो आज मेरे साथ कोई सैनिक नहीं चलेंगे, दूसरे लोग नहीं चलेंगे, कोई ज्ञाति न्याति दूसरे राजा लोग भी नहीं चलेंगे, केवल अपने पांचों भाई चलेंगे, क्योंकि पितामह भीष्म को बड़ी पीड़ा होती है, इसलिए अपने पास में केवल अपने पांच भाई चलेंगे, दूसरा कोई नहीं चलेगा। रथ पर बैठ करके तैयार हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर इन पांचों, युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ ऐसे लग रहे थे जैसे पांच महाभूत हैं ये, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश के समान। भगवान श्री कृष्ण को साथ में ले लिए, सबके रथ वहां से बड़ी अच्छी ध्वनि करते हुए आगे बढ़े और बड़े तेजी से चलते चलते कुरुक्षेत्र के पास आए, और कुरुक्षेत्र के पास आकर जहां पितामह भीष्म विराजमान थे वहां ये सब लोग पहुंच गए। रथों से उतरने के बाद युधिष्ठिर महाराज, भीम, गांडीव, धनवा, अर्जुन और नकुल, सहदेव, सात्यकी, ये सब वहां पर पहले से ही विराजमान ऋषि मुनियों का हाथ उठा करके उन्होंने अभिवादन किया और पितामह भीष्म के पास आ गए और आकर के पितामह भीष्म को प्रणाम किया। जन्मेजय ने पूछा कि पितामह भीष्म जो कि धर्मात्मा थे, महापराक्रमी थे, सरसैया पर गिरे हुए भी वे बड़े कांतिमान थे, ऐसे पितामह के पास जाकर उन पांडवों ने क्या बातचीत की। वैशंपायन जी कहते हैं कि देखो जब सब ऋषि मुनि वहां आ गए, अब विचार हुआ कि किस प्रकार से वार्तालाप का शुभारंभ किया जाए। वहां धृतराष्ट्र भी थे, कृष्ण भगवान थे, भीमार्जुन सब थे, तो कोई बातचीत का सिलसिला प्रारंभ नहीं हुआ, तो वहां नारद जी महाराज ने बातचीत को उठाया और नारद जी ने कहा, प्राप्त कालम समाचक्षे भीष्मो अयमनयुज्यताम अस्तमेति हि गांगेयो भानुमानिव भारत। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा और पांडवों की ओर मुख करते हुए कहा, प्राप्त कालम समाज, हे कृष्ण आपने कल बताया था कि इनकी 56 दिन की आयु बाकी बची है, हे पांडवों अब ये सूर्य, ज्ञान का सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाला है, आप लोगों को कुछ बात पूछ करके दुनिया का हित करना हो तो ये बड़ा अच्छा मौका है। जीवन में सत्पुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ होता है, ऐसे महापुरुष चले जाएंगे फिर आपके पास ज्ञान की चर्चा को आत्मीयता के साथ कौन कहेगा। पितामह भीष्म तो मानव शरीर में है और ये भी चाहते हैं कि सत्संग केवल मानव शरीर में ही संभव है, ये तो ऊंचे लोक में तो चले जाएंगे पर वहां भी इनका ज्ञान इनके पास ही रहेगा, वहां पर ज्ञान की चर्चा किससे करेंगे, कोई ज्ञान की चर्चा नहीं होती, इसलिए जल्दी करो, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न करो। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान की ओर देखा, देख करके कहा, हे नारद महाराज, नान्यस्तु देव की पुत्रा छक्त प्रष्टुम पितामहम्। मुझे तो बार बार इतनी ग्लानी होती है, पितामह भीष्म की ये दशा हमारे कारण से हुई और हम आज इनसे किस मुंह से बात करें, क्या प्रश्न करें, कैसे बोलें। यहां तो देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण के अलावा पितामह भीष्म से बात करने का हम में किसी का भी साहस ही नहीं होता। हे मधुसूदन, आप हमारे हर काम में अग्रणी रहे, आज आप ही आगे बढ़कर ज्ञान की चर्चा का शुभारंभ कराइए। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और पितामह भीष्म के पास जाकर बातचीत का शुभारंभ करते हुए कहने लगे, हे पितामह भीष्म, आज रात को आप और रात्रि की अपेक्षा खूब बढ़िया नींद आई होगी ना, खूब अच्छा ध्यान लगा होगा ना, आपके शरीर में कोई अब पहले जैसी पीड़ा तो नहीं हो रही ना, आपकी बुद्धि के अंदर संपूर्ण ज्ञान एकदम उद्भासित हो रहा होगा ना, आपके हृदय में कोई शोक या ग्लानि तो नहीं हो रही है ना, आपका मन व्याकुल तो नहीं है, प्रसन्न है ना। पितामह भीष्म बड़े शांत मुस्कुरा करके भगवान से कहने लगे, हे कृष्ण, पहले मेरे बड़ा दाह था, पहले मेरे बड़ा मोह था, शरीर में बड़ी ग्लानी थी, लेकिन कल से जब तुमने हमको ये वरदान दिया उसके बाद मेरे मन में अपार शांति है। अब मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूं कि जो भूतकाल की चीजें हैं, जो भविष्य की चीजें हैं, वो मेरे लिए वर्तमान बनी हुई हैं। मैं वेद वेदांत सारे शास्त्रों को कह सकता हूं केवल आपके वरदान के कारण से। शिष्ट जनों को क्या करना चाहिए, किस देश जाति में किस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, सब मेरे अंदर उद्भासित हो गया है। चारों वर्णों में, चारों आश्रमों में कैसे मनुष्य को रहना चाहिए, राज धर्म का भली भांति ज्ञान हो गया है। यच्च यत्र च वक्तव्यम, कहां किसको कैसी बात बोलनी चाहिए, कहां किस प्रकार कहां मनुष्य को चुप रहना चाहिए, ये बात भी मेरे अंदर प्रकट हो गई है। बस आज तो मेरी ये दशा हो रही है कि मैं अवस्था से तो बुढ़ा हूं और बाणों से जर्जरित हो गया हूं, लेकिन मन है मेरा एक युवक के समान, बड़ा उत्साहित हो रहा है। और सच पूछा जाए, कृष्ण, अब तो तुम्हारा ध्यान करते करते भी मेरा मन बड़ा उत्साहित है और अब मैं सब कुछ बात कहने में समर्थ हो गया हूं। स्वयं किमर्थम तो भगवान श्रेयो न प्राह पांडवम। मैं तो बार बार ये सोचता हूं कि आप मुझे प्रेरित करते हो, लेकिन आप स्वयं पांडवों को क्यों नहीं उपदेश दे देते। मैं ये अभी तक मेरे इसे समाधान नहीं हो पाया है। भगवान वासुदेव मुस्कुराते हुए कहने लगे, पितामह, मैं किसी बात को किस हिसाब से करता हूं ये मैं ही जानता हूं। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे पितामह भीष्म जिस प्रकार इस संसार में युद्ध कौशल में प्रवीण है, उनकी भक्ति के प्रभाव से संपूर्ण संसार को पता चल जाए कि इनके अंदर कितना ज्ञान है। आधेयम तो मया भूयो यशस्तव महाद्युते, आप ज्ञान देंगे तो आपका कितना यश बढ़ेगा। मुझे तो केवल आपके यश की प्रतिष्ठापना करनी है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं। युधिष्ठिर को उपदेश देना ये बड़ी बात नहीं है, बड़ा बात तो मेरा आपका यश स्थापित करना है। आप जो कुछ यहां युधिष्ठिर को उपदेश देंगे वेद प्रवाद है, वो वैदिक सिद्धांत होगा। लोग कहेंगे कि देखो पितामह भीष्म ने ये बात कही, पितामह भीष्म ने ये बात कही, आपके वाक्य प्रामाणिक होंगे। और जो व्यक्ति आपके इन उपदेशों को जीवन में सुन लेगा उसका मृत्यु के बाद किसी प्रकार से कोई कष्ट होने वाला नहीं है। आपके वचनों के पीछे मैं अपनी शक्ति स्थापित करता हूं। इसलिए पितामह मैंने आपको दिव्य ज्ञान दिया है, दिव्य बुद्धि दी है, और इसी के द्वारा आपको आगे बोलने के लिए मैंने निवेदन किया है। यहां बहुत से राजा लोग भी आए हुए हैं जो आपके बाणों से मरने से बच गए, वो भी बेचारे बैठे हैं, आपका दर्शन करेंगे और आपका उपदेश सुनेंगे। जन्म से लेकर अभी तक किसी ने भी आपके विषय में कोई दोष नहीं कहा, न देखा, न जाना, न समझा। ऐसे ऐसे आपके पास श्रद्धा पूर्वक लोग बैठे हुए हैं। आप इनको और इनमें पांडवों को, ये आपके पुत्र हैं, पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, आपके बच्चे हैं, और इस समय बड़े दुखी हैं। आपका उपदेश इनके लिए कितनी शांति देने वाला होगा, अतः आप स्वयं आगे बढ़कर उपदेश दीजिएगा। धर्मम शुश्रूषमाणेभ्य, शास्त्रों में आता है कि जो धर्म की जिज्ञासा को सुनने की इच्छा से कोई किसी के पास जाए और वो उसको बड़े प्रेम से सुनाए तो उस पुरुष का इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और अप्रतिब्रूत है, और यदि कोई धर्म की बात न बोले पूछने पर दोषो ही भविता प्रबोध, में बड़ा दोष लगता है। इसलिए आप में बड़ी श्रद्धा रखने वाले आप इनको धर्म की बात बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के पितामह भीष्म ने कहना चालू किया, हे गोविंद, आपकी कृपा से अब मैं से कोई प्रश्न करेगा उस प्रश्न का ठीक समाधान करने का मेरे में बल आ गया है। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर ये मौका है, ये सारी भूमिका तुम्हारे लिए बनी हुई है, आप खूब आनंद के साथ प्रश्न कीजिए। हां बेटा युधिष्ठिर, माम धर्मान अनुपृच्छत है, आप मेरे से धर्म के विषय में बहुत स्पष्टता से प्रश्न कीजिए। वत्स, मैं तुम्हें धर्म का गूढ़ से गूढ़ तत्व सिखाऊंगा। पूछो युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि तुम बड़े धैर्यवान हो, ज्ञानवान हो, ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हो, क्षमावान हो, और कभी भी किसी से उद्विग्न होने वाले नहीं हो, किसी को उद्विग्न करने वाले नहीं हो, सत्यवान हो, दानवान हो, शौर्यवान हो, धैर्यवान हो, यस्मिन नेतानि सर्वाणि, और आपके अंदर जितने गुण मौजूद हैं उतने दूसरों में नहीं है। पूछिए पूछिए युधिष्ठिर, आप मुझसे पूछिए। भगवान वासुदेव ने कहा, महाराज आप युधिष्ठिर की इतनी प्रशंसा इसके मुख पर कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज तो ऐसे ही लज्जा में डूबे हुए और डूब गए। ये अभी आपके पास आने में थोड़ा संकोच करते हैं कि कहीं आप उनको शाप न दे देवे। इतना गुण आपने देखा है, ये सोचते हैं कि कहीं पिता में मुझे कह देंगे कि युधिष्ठिर तुम्हारे अंदर राज्य की लिप्सा थी ना, तब देखो हमारी ये दशा हुई। और हे युधिष्ठिर, तुम्हारे अंदर राज्य की लिप्सा थी, तुम्हारे गुरु चले गए, द्रोणाचार्य जी चले गए, तुम्हारे सगे संबंधी सब मारे गए, ऐसी ऐसी बातें कहीं आप न कह दें, इससे डर के मारे ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। और साथ साथ में पूज्य माननीय पुरुष जिनका वियोग इनके लिए अभी असह्य हो रहा है, इसलिए आपके पास आने में बैठने में संकोच कर रहे हैं। भीष्म पिता, मैंने कहा वत्स युधिष्ठिर, जैसे ब्राह्मण का तपस्या धर्म है, दान देना दान लेना धर्म है, ऐसे क्षत्रिय का भी युद्ध करना धर्म होता है। तुम्हारे मन में ये जो बार बार भावना पैदा होती है कि मैंने पिताओं को मारा, पितामहों को मारा, गुरुजनों को मारा, नहीं नहीं, मिथ्या प्रवृत्तान यह संख्य, तुमको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। तुमने पिता को थोड़े ही मारा है, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। देखो, तुमने पिताओं को नहीं मारा, तुमने भाइयों को नहीं मारा, तुमने गुरुजनों को नहीं मारा, तुमने अपने प्रतिपक्ष में खड़े हुए योद्धाओं को मारा है, जो क्षत्रिय का धर्म होता है। क्या तुम पिता के घर जाकर पिता को मार के आए? क्या गुरुजी के साथ तुमने व्यक्तिगत लड़ाई की? शत्रु पक्ष में खड़े हुए थे हम लोग, तुम्हारे शत्रु पक्ष में खड़े थे। तुम्हारा कर्तव्य शस्त्र चलाना होता है, तुमने महल में थोड़ा ही शस्त्र चलाया है। कितने विनम्र हो तुम, कितने शिष्ट हो, मेरे सामने कभी तुमने एक शब्द भी नहीं बोला और वो आप मेरे सामने बाण चलाए। ये तो एक धर्म की मर्यादा थी, आप लोगों ने मर्यादा का पालन किया है, और यदि आप मर्यादा का उल्लंघन करते तो आपको दोष लग सकता था। आपने कोई लोभ से नहीं मारा है, आपने कोई जो है अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा है, आप क्षत्रिय, क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए ऐसा किया है। लोहितोदाम केशत्रिणाम गजशैलाम ध्वजद्रुमाम महिम करोति युद्धेषु क्षत्रिय सधर्मवित्। जो क्षत्रिय युद्ध के अंदर खून की नदी बहा दे, जहां बड़े बड़े हाथी हैं वो पर्वत के समान हो, और बड़े बड़े ध्वजा गिरते वो वृक्ष के समान गिरते हो, और उनके जो बाल केश हैं ये सब के सब घास के समान दिखते हो, ऐसी नदी क्षत्रिय बहाता है, वो क्षत्रिय श्रेष्ठ क्षत्रिय होता है। आहूते नरणे नित्यम योद्धव्यम क्षत्र बंधुना। संग्राम में शत्रु यदि ललकारता हो और क्षत्रिय अपने घर में बैठा रहता हो, वो क्षत्रिय निकृष्ट क्षत्रिय होता है। इसलिए आपने अपने धर्म का खूब अच्छा पालन किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा सुनने पर युधिष्ठिर जी को लगा कि अरे मैं तो व्यर्थ में ही विचार कर रहा था। वो थोड़े आगे बढ़े, आगे बढ़ करके उन्होंने पितामह भीष्म के दर्शन किए। पितामह भीष्म ने उनके सिर पर हाथ रखते कहा, बेटा बैठो मेरे पास, घबराओ मत, शोक मत करो। माम पृच्छतात विश्रब्दम मा भई स्वम कुरु सत्तमय, कोई चिंता की बात नहीं, तुम मुझसे खुल करके पूछो, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं, और उसमें भी कृष्ण का आदेश हुआ है। तब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज, राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? मेरे कोई राज धर्म भार क्यों मालूम देता है? है तो राज धर्म, लेकिन मुझे भार मालूम देता है, ये क्या कारण है? राज धर्म को विशेषता से कहो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का कैसे वो पालन कर सकता है? जैसे घोड़े को काबू में रखने के लिए उसकी रश्मियां काम आती हैं, लगाम काम आता है, हाथी को काबू में रखने के लिए अंकुश काम आता है, उसी प्रकार राजधर्म प्रजा के लिए एक अंकुश है, ये बात मेरे समझ में आनी चाहिए। जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही अशुभम तमय नाशयति, अशुभ अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार आपके उपदेशों से मेरा अज्ञान रूप अंधकार नष्ट होने वाला है। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, सर्वप्रथम मैं यही विराजमान, नहीं सर्वत्र विराजमान, अरे नहीं नहीं मेरे हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज यहां विराजमान, सर्वत्र विराजमान, हृदय में विराजमान का अर्थ क्या हुआ? यहां विराजमान सगुण साकार रूप से, सर्वत्र विराजमान परमात्मा रूप से, और अनुभूति में आता है अपने अंदर विराजमान आत्मा रूप से, वो भगवान ही तो है। इतने व्यापक भगवान, इनको मैं प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित सब ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, और मैं तुमको अब राजधर्म सुनाता हूं। राजा का ये धर्म होता है कि वो प्रजा का जैसे हित हो और प्रजा की जैसी प्रसन्नता हो ऐसा उसको काम करना चाहिए, और प्रजा के हित के लिए देवताओं का और ब्राह्मणों का सदा वो विनय पूर्वक व्यवहार करें, देवताओं की पूजा करें। राजा को चाहिए कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध इन दोनों के अंदर अपना पुरुषार्थ की तरफ विशेष ध्यान रखे, क्योंकि प्रारब्ध है वो होने वाली घटनाओं में प्रधान होता है, करने में पुरुषार्थ की प्रधानता होती है और होने में प्रारब्ध की प्रधानता होती है। प्रारब्ध का फल होता है वो किए हुए कर्म का फल होता है, और हम लोग वर्तमान में पुरुषार्थ की प्रधानता से काम करने के लिए आए हैं, इसलिए पुरुषार्थ की प्रधानता में चलो। कभी कोई विपत्ति आ जाए उस विपत्ति में अपना धैर्य मत खो, अपनी विपत्ति किसी को बताओ भी मत, सदा सत्य का पालन करो। ये युद्ध हुआ है, ये केवल युद्ध बाहर का युद्ध नहीं है युधिष्ठिर, ये अंतर में भी तो एक युद्ध चलता है। अपनी इंद्रियां है, अपना मन है, बुद्धि है, ये सब शत्रु समुदाय है, इसको भी जीतने का, इसके प्रति भी राजधर्म निभाने का काम होना चाहिए ना। तो सत्य का पालन करो, सत्य कहो, सत्य ही राजा निरता है। जो राजा सत्य के अंदर डूबा रहता है वो इस लोक में परलोक में सदा ही आनंदित रहता है। बड़े बड़े ऋषियों ने कितने कष्ट सहन कर लिए पर सत्य को नहीं छोड़ा। राजा कैसा गुणवान, शीलवान, रूपवान, कोमल, कठोर, सब तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल सरल ही सरल, एकदम सीधा साधा रहे, नहीं। यदि आप सीधे साधे रहोगे तो आपको दूसरे शत्रु कभी भी दबा लेंगे, और यदि आप बहुत ही कठोर रहोगे तो भी आपके लिए उचित नहीं होगा। अदंड को कभी दंड मत देना। भूतमेतत् परेलोके ब्राह्मणो नाम पांडव है, ब्राह्मण को कभी भी दंड नहीं देना। मनु जी ने ये कहा है कि अग्नि से जल पैदा होता है, अग्नि जल से पैदा होती है, और क्षत्रिय और ब्राह्मण से क्षत्रिय पैदा होते हैं, और लोहा है वो पत्थर से पैदा होता है। तो अग्नि सब जगह तो देखो अपना विजय प्राप्त कर सकती है, परंतु जल के सामने अग्नि का प्रभाव नहीं चलता। ब्राह्मण क्षत्रिय सबके ऊपर अपना प्रभाव जमा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर उसको प्रभाव नहीं जमाना चाहिए। और पत्थर है, लोहा है, वो सबको काट सकता है, परंतु जब पत्थर से लोहा भिड़ता है तो भाई उस समय में जो है लोहा कट जाता है। इसलिए क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण का आदर करते हुए चले। दूसरी बात, यह भी बताई जाती है कि यदि वो ब्राह्मण युद्ध के अंदर आ जाए तो उसको पकड़ करके कैद खाने में डाल सकते हो, और यदि वो ब्राह्मण युद्ध के अंदर आए और अनाचार दुराचार करे और उसमें उसको दंड देने में यदि मृत्यु हो जाए तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। ब्राह्मण को पकड़ करके देश निकाला दे सकते हैं। ब्राह्मण को मारने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्रह्म हत्यार और एक भ्रूण हत्यारा और एक राज द्वेष करने वाला, ये सब के सब महान पापी कहलाते हैं। इनका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। इनमें यदि ब्राह्मण यदि ये चारों ही पाप करता हो तो देश निकाला दो, उसको देश में मत आने दो, लेकिन शारीरिक दंड उसको नहीं दिया जाता है। एक तो अलग से दंड, क्षत्रिय वही ब्राह्मण यदि क्षत्रिय के समान युद्ध में खड़ा हो तो मारने में दोष नहीं है। क्षममाणम नृपम नित्यम, ज्यादा क्षमाशील भी नहीं होना चाहिए। ये हाथी है कितना बलवान होता है परंतु क्षमावान होता है तो इसके माथे के ऊपर महावत बैठता है और अंकुश की मार लगाता है। इतना क्षमावान भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा कठोर हो जाओगे तो भाई दुनिया टूट जाएगी। इसलिए बताया है कि राजा को कैसा होना चाहिए, वसंत के सूर्य के समान होना चाहिए। वसंत का सूर्य कहते हैं, वसंत का सूर्य कैसा होता है जी, कि वसंत का सूर्य होता है न तो ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा होता है। इस प्रकार से राजा को न तो ज्यादा क्षमाशील और न ज्यादा जो है कठोर होना चाहिए। प्रजा को गर्भवती स्त्री के समान रखना चाहिए। जैसे गर्भवती स्त्री है वो अपने बच्चे के हित के लिए हर कुछ चीज नहीं खा सकती। गर्भवती स्त्री चरपरा नहीं खा सकती, गर्भवती स्त्री गरम गरम चीज नहीं खा सकती, क्योंकि उससे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भस्य हितम आधत्ते, वो जो कुछ भी करती है केवल गर्भ के हित के लिए ही खाना पीना व्यवहार करती है। इसी प्रकार से राजा को व्यवहार करना चाहिए प्रजा के प्रति। स्वम प्रियम तु परित्यज्य, अपना जो प्रिय है उसका त्याग कर सकता है, क्योंकि राजा प्रजा का हित देखने वाला होता है। जो राजा अपने पास नौकरों को मुंह लगाए रखता है वो राजा सदा ही कष्ट पाता है। नौकरों के साथ बैठकर, ये तो सभी के लिए बात है युधिष्ठिर, अपने से जो बहुत छोटे भृत्य वर्ग में आने वाले हैं उनसे ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा मुंह लगाएंगे तो मौके पर अपमान कर देंगे, आज्ञा का उल्लंघन कर देंगे, किसी काम के लिए कहेंगे तो वो बेपरवाही से करेंगे या उस काम के अंदर ही दोष बता दें, ये क्यों कराते हो, ऐसा करने से तो ऐसे हो जाएगा। उनके अंदर आज्ञा पालन की भावना नहीं रहेगी और इतने सिर चढ़ जाएंगे कि वो तरह तरह से जो है वो वहां राजा के पास ही उबासी लेना या राजा के पास ही थूक देना, ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। इसलिए ज्यादा इनको मुंह नहीं लगाना चाहिए। श्रुतियों ने कहा है कि क्रुद्धे चास्मिन हसन्त्येव, जब राजा क्रुद्ध हो जाता है किसी बात के लिए तो ये मुंह लगे लोग क्रुद्ध हो जाते हैं, हंसते हैं। और नचरिष्यन्ति पूजिता, और इनको आप कितना ही आदर दो सम्मान करो, ये सम्मानित होने पर भी अपनी धृष्टता के कारण से प्रसन्न भी नहीं होते। इसलिए इनसे यथोचित बर्ताव करना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा कि शुक्राचार्य जी ने कहा है कि जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहों को निगलता रहता है, उसी प्रकार दूसरों से लड़ाई न करने वाले राजा है वो दूसरे के द्वारा निगल लिए जाते हैं। एक तो राजा को और एक ब्राह्मण को, इन दो को ज्यादा घर में नहीं रहना चाहिए, फिरते रहना चाहिए। तदेतन नरसार्दूल यदि तुम कर्तुमर्हसि, जो मैंने बताया है इसको तुम करते रहोगे तो ठीक चलोगे। अपने शत्रु की सदा निगाह रखो। वहां सात चीजें होती है, राजा, प्रकृति, मित्र, खजाना, दास, दुर्ग, देश, सेना, सब पर नजर रखो कि उसकी सेना कैसी है। यदि वो सेना बढ़ा रहा है और अपने से ज्यादा मजबूत है तो बिल्कुल सावधान हो जाओ, और यदि उसकी सेना इतनी कमजोर है तो फिर मौका देखकर आक्रमण भी कर सकते हो। पर उससे पहले ये देखना है कि वो धर्म करता है कि अधर्म करता है। यदि उसकी सेना ज्यादा बढ़ती है तो वो क्या कर सकता है, ऐसे विचार करके चलना चाहिए। चातुर्वर्ण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो शूरवीर होते हैं और जो हमारे विश्वास पात्र होते हैं और जो लोक व्यवहार में बड़े निपुण होते हैं, जो भरी सभा में जाकर अपने राजा की हित की बात कह सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों का सदा समय समय पर पुरस्कार करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए उनको, और अपने भावों को सदा छिपा करके रखना चाहिए। राजानम प्रथमम बिंदे ततो भार्याम ततो धनम। राज मनुष्यों की एक प्रकृति है, यदि उनको अच्छा राजा नहीं मिलता है तो वो शादी नहीं कराते और वो धन भी नहीं कमाते। अच्छा राजा होता है तब वो उनके मन में विश्वास हो जाता है कि हमारे परिवार की और हमारे धन की यहाँ रक्षा होगी, इसलिए राजा के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व रहा करता है, इस दायित्व को खूब अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। जो राजा उद्योगहीन होता है वो बलवान होने पर भी किसी काम का नहीं है। राजा को सदा विश्वस्त सब पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए और सब पर अविश्वास भी नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी खूब सी शिक्षा दी और फिर सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होने के बाद ततो द्विजाति नभिवाद्य केशव कृपश्चते वै युधिष्ठिरादय प्रदक्षिणी कृत्य महान महानदी सुतम ततो रथानारुरुर्मुदान्विता। सब राजा लोग और वहां उपस्थित ऋषि मुनि युधिष्ठिर भीष्म पितामह को प्रणाम किया और सब अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो गए, और महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर में आकर विश्राम करने लगे।
नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण